यशाया अध्याय 41, यशाया 41 अध्याय के प्रथम भाग में परमेश्वर कुसरू के विषय में कहता है, जबकि कुसरू का अभी जन्म ही नहीं हुआ था, उसका जन्म तो अभी 150 वर्ष बाद होना था, परंतु परमेश्वर उसके बारे में कहता है कि वो उसे कैसी आशीष देगा, उसे किस प्रकार बड़ा करेगा और समृद्ध बनाएगा, उसे कैसे पूरा प्रदेश देगा और किस प्रकार सब राष्ट्रों को उसके अधीन कर देगा। और जैसे जैसे हम आगे अध्ययन करते जाएंगे, वैसे वैसे देखेंगे कि परमेश्वर उसे नाम देते हुए कहता है, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तुझे तेरे नाम से पुकारूंगा कुसरू। परमेश्वर उसे अपना सेवक कहता है। ये अति विचित्र बात है कि जिस मनुष्य का जन्म 150 वर्ष बाद होने वाला है, उसके जीवन और उसके जीवन द्वारा किए जाने वाले कार्यों का परमेश्वर अभी से वर्णन कर रहा है। यशाया अध्याय 41 पद 1, हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो। यहां द्वीपों का अर्थ है समुद्री किनारे। यशाया अध्याय 41 पद 1, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें, वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। अब परमेश्वर कुसरू के विषय में कहता है, यशाया अध्याय 41 पद 2, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वो धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है, वो जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। ये एक प्रश्न है कि किसने ये सब किया। उसका उत्तर पद 4 के अंत में है, मैं वही हूं जिसने उसे राजाओं पर अधिकारी ठहराया है। यशाया अध्याय 41 पद 2 से लेकर 4 तक, वो अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और उसके धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है, वह कुसरू उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वो कभी न चला था बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने ये काम किया है और आधी से पीढ़ियों को बुलाता आया है। दूसरे शब्दों में वो आधी से ही उन मनुष्यों के नाम लेता है। यशाया अध्याय 41 पद 4, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। किसने उसे उठाया, उस व्यक्ति को कौन आगे लाया, उसे राज्य किसने प्रदान किया, मैं यहोवा। यशाया 41 अध्याय पद 5 से लेकर 8 तक, द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध, बड़ाई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को ये कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है, सो वो कीले ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वो स्थिर रहे। हे मेरे दास इसराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। पद 8 के आगे अब वो कुसरू से हटकर इसराइल के विषय कहता है, जो याकूब की जाति है, तू मेरा दास है, यहोवा घोषित करता है। और यशाया की पुस्तक में हम देखते हैं कि यशाया इसराइल को परमेश्वर का दास कहता है। निस्संदेह वो मसीह यीशु को भी परमेश्वर का दास कहता है। यशाया की पुस्तक में दाऊद को परमेश्वर का दास कहा गया है। अपने अध्ययन में हम शीघ्र ही देखेंगे कि धर्मी दास मसीह यीशु के विषय बहुत कुछ कहा गया है जिसको परमेश्वर ने उभारा है, परंतु इस समय वो याकूब और इसराइल के लिए कह रहा है, मैंने अपने मित्र इब्राहिम की संतान को चुन लिया है। ये कैसा चित आकर्षक उल्लेख है। यशाया अध्याय 41 पद 9 और 10, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यदि इस प्रतिज्ञा को सीमित परिपेक्ष में देखें तो ये प्रतिज्ञा चुने हुए याकूब और इसराइल के वंशजों के लिए है जिन्हें वो पृथ्वी के छोर से एकत्र करेगा जहां वे तितर बितर किए हुए हैं। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे त्याग नहीं दिया है। आज की प्रचलित एक शिक्षा है जो धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं है। इस शिक्षा के अनुसार परमेश्वर ने इसराइल को त्याग कर दिया और वो अपनी योजना को कलीसिया में पूरी करेगा क्योंकि इसराइल को त्याग कर उसने दूर कर दिया है। ये सत्य नहीं, सत्य तो होशे की भविष्यवाणी है। जो परमेश्वर को ही समर्पित है और उसके अनुसार वो पति पत्नी को पुनः स्थापित करके पत्नी स्वरूप अपनाएगा। इस प्रकार होशे की संपूर्ण भविष्यवाणी एक हर्ष का सुसमाचार है, यद्यपि ये रूपक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहले बातें की तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत सा काम करता है। सो उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वो उसे गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़ी ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इसराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा, और उस समय मैं इज़राइल की तराई में इसराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। और वो स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लो रुहामा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूंगा। वो उसे छोड़कर चली गई और फिर से वेश्यावृत्ति करने लगी। कुछ वर्ष बाद परमेश्वर ने होशे से कहा, जाकर अपनी पत्नी को खोज और उसे मुक्त करा। उसने अपना जीवन बेच दिया था। परमेश्वर ने कहा, उसका मुक्ति धन देकर उसे फिर से ले आ और पत्नी बना। तब परमेश्वर ने वचन दिया कि वो इसराइल को पुनः स्थापित करेगा। पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को त्याग दिया है, परमेश्वर ऐसा ना करे। पौलुस अपने उपदेशों में अंत तक यही कहता रहा कि परमेश्वर उनको फिर से आबाद करेगा। उनका एकत्रीकरण कैसे होगा? परमेश्वर का उनमें एक बार फिर काम करेगा, परंतु राज्य के युग में। पौलुस ने रोमियो के अध्याय 11 में क्या कहा? रोमियो 11 अध्याय 25 और 26 पद, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा। यहां अर्थ स्पष्ट है कि परमेश्वर को अभी उनमें अपनी योजना की पूर्ति करनी है। जब परमेश्वर उनमें अपना काम आरंभ करेगा, तब पृथ्वी शैतान के अंतिम 7 वर्षों में प्रवेश कर चुकी होगी। ये 7 वर्ष पृथ्वी पर प्रभु के राज्य के आने से पूर्व के होंगे। दानियल के अध्याय 9 में इसराइल को 70 सप्ताहों का समय दिया गया है। दानियल अध्याय 9 25 और 26 पद। ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के पुनरुद्धार के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक काटा जाएगा। अब यहां 7वां सप्ताह भविष्यवाणी की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहा है कि भविष्यवाणियों पर मुहर लगे कि महापवित्र स्थान का अभिषेक हो और अनंत धार्मिकता का आगमन हो, कि अनंत धार्मिकता का राजा आए। कहने का अर्थ यह है कि आपके पास अभी 70वां सप्ताह बाकी है जो भविष्य में आने वाला है। इसका आरंभ तब होगा जब रूस इसराइल पर आक्रमण करेगा और अपने विनाश को देखेगा। अतः परमेश्वर एक बार फिर से इसराइल राष्ट्र के साथ विशेष रूप से काम करेगा। ये तब होगा जब परमेश्वर का कार्य अन्य जातियों में पूरा हो जाएगा। यहां परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे त्यागा नहीं है। वे परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। आप इस सत्य का त्याग नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं है। वे परमेश्वर को भूल गए हैं, जैसा यशाया आगे के अध्यायों में व्याख्यान करेगा कि उन्होंने परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ाए हैं, और उन्होंने एक प्रकार से परमेश्वर को अपने मध्य से निकाल बाहर किया हुआ है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें अपने मन से नहीं निकाला है। वो उनके साथ निश्चय ही अद्वैत काम करेगा। अब परमेश्वर उनके बारे में कहता है जो उनसे जलन रखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे सताए हुए लोग हैं। ये बड़े दुख की बात है कि उनकी अधिकांश पीड़ा कलीसिया की ओर से आई है। मेरे विचार से परमेश्वर विश्व का सबसे अधिक निंदित व्यक्ति है। शैतान ने उसकी निंदा की। आज जिन्होंने आयरलैंड को देखा है कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट समुदाय कैथोलिक समुदाय से युद्ध करता है, जबकि ये राजनीति है, धर्म नहीं। यहां ईसाई आपस में युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति है। परंतु कहा तो यही जाता है कि प्रोटेस्टेंट कैथलिकों से युद्ध कर रहे हैं। उनके कहने का अंदाज यह है कि परमेश्वर मनुष्य को मनुष्य से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। निश्चय ही ये मसीह व्यवहार नहीं है, और ना ही वे अनेक काम जो धर्म के नाम पर इतिहास में कलीसिया द्वारा किए गए हैं या कलीसिया के नाम में किए गए हैं। मसीही धर्म के नाम में अनेक काम किए हैं, और आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं हम मसीह हैं, जबकि वे सच्चे मसीह नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा था, मती अध्याय 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मसीह के नाम में लोगों ने जो काम किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहूदियों को सताया है, इस कारण अनेक यहूदियों के मन में बड़ी कटुता भरी हुई है जो कलीसिया के विरुद्ध है। ये एक तरह से देखा जाएगा तो उचित ही है, क्योंकि वे कलीसिया को मसीही विश्वास के समतुल्य माना है। हम इसराइल में बहुत बार ठहरे हैं, वहां हमारे बहुत मित्र हैं। जब वे बातें करते हैं तब कहते हैं, हम ईसाई, हम ईसाई। हम उनसे कहते हैं, जरा रुकिए, हम भी ईसाई हैं। ओह नहीं, वे कहते हैं, तुम कलवरी चैपल के ईसाई हो, तुम अलग हो, तुम तो हमसे प्रेम रखते हो। हम जानते हैं कि तुम हमसे प्रेम रखते हो, और वहां मसीही विश्वासियों में अंतर दिखाई देने लगता है। उनमें हमसे अधिक बुद्धि है। पश्चिम में लोगों की धारणा यह है कि यदि आप कम्युनिस्ट नास्तिक नहीं हैं, तो आप ईसाई हैं। सत्य तो यह है कि एक ईसाई इससे बहुत अधिक होता है। एक ईसाई मसीही विश्वासी होता है जिसने अपना जीवन मसीह यीशु की प्रभुता में समर्पित किया होता है। वो जो मसीह यीशु के अनुसरण का खोजी होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शासित जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर से शब्दों से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करे। परमेश्वर ने कहा, मैं हूं, यशाया अध्याय 41 पद 11। देख, वे जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। उनसे युद्ध करना व्यर्थ है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे त्यागा नहीं है, और वे जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी, उत्पत्ति अध्याय 12 पद 3, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। अंतिम न्याय तो नहीं, परंतु जब यीशु पृथ्वी पर आकर सब जातियों को एकत्र करेगा, उस समय केवल इसराइल के साथ उनके व्यवहार का न्याय किया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, मत्ती 25 अध्याय 42 से 45 पद, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरा सेवा टहल न की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन छोटे से छोटों में किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। वो उन्हें अपना भाई कहता है, वे परमेश्वर के चुने हैं। मुझे प्रायः पास्टर गण घृणा के पत्र भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि कलवरी चैपल ने यहूदियों की सहायता करने का प्रयास किया है। हमारे मन में उनके लिए प्रेम है, और हमने उस प्रेम का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया है। हमने उनके अस्पतालों में सहयोग भी दिया है। हमने इसराइली परियोजनाओं में योगदान भी दिया है। घृणा से भरे इन पत्रों का कारण यह है कि उनके विचारों में परमेश्वर ने इसराइल को त्याग दिया है। अतः हम कैसे ऐसे व्यक्तियों की सहायता करें जिन्हें परमेश्वर छोड़ चुका है? परमेश्वर ने ये कहा था, मैंने उन्हें त्यागा नहीं है, और परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी है कि वो उन्हें आशीष देगा जो इसराइल को आशीष देते हैं। हमने परमेश्वर से आशीषें पाई है, इसका इनकार कौन कर सकता है? अतः जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। यशाया अध्याय 41 पद 12। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। मिस्र जाकर उनसे संधि करने से लाभ नहीं, मैं कहता हूं इनसे युद्ध कर ही डालो। यशाया अध्याय 41 पद 13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कौन इनकार कर सकता है? क्या परमेश्वर ने इन्हें असीम आशीषें नहीं दी है? यशाया अध्याय 41 पद 14 से लेकर 20 तक। हे कीड़े सरीके याकूब, हे इसराइल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और छोका यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाए दाए कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होना और इसराइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इसराइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टिलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोवर, चिनार वृक्ष और सीधा सनोवर इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इसराइल के पवित्र का सृजा हुआ है। इसराइल जाकर इस भविष्यवाणी को पूरा होना देखने का एक जीवंत अनुभव है। यशाया ने जो कुछ कहा है वो आज वहां पूरा हो चुका है। वे क्षेत्र जो कभी सूखे और उजाड़ थे, रेगिस्तान थे, आज वहां सिंचाई की परियोजनाएं हैं, पानी के कुंड है, वहां आपको छिड़कने वाले साधन, फवारे बहुत संख्या देखने को मिलेंगे। वो एक शक्तिशाली कृषि प्रधान देश बन गया है। वहां के निवासी उन उजाड़ स्थानों में करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं और रोचक बात तो ये है कि वे पेड़ किसी न किसी लाभकारी कृषि उत्पाद के ही हैं। वे चीड़ के पेड़ और देवदार के पेड़ उगा रहे हैं क्योंकि वे चट्टानी भूमि पर भी आसानी से उग जाते हैं। उनकी जड़ें चट्टानों की दरारों में से होकर नीचे चली जाती है और वे पल्लवित हो जाते हैं। उनकी जड़ें चट्टानों को तोड़ देती है और वन के कारण जब वर्षा आती है तब मिट्टी बहकर नीचे घाटी में चली जाती है। इस प्रकार वे घाटियों में उपजाऊ मिट्टी का विकास करके जबरदस्त फसल काट रहे हैं। वे दलदली क्षेत्रों में सफेदे के पेड़ उगा रहे हैं। सफेदे के पेड़ के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, अतः वहां की दलदल भूमि सूख जाती है। इसराइल के पुनरुद्धार की उनकी परियोजना एक उत्साहवर्धक कार्य है। ये सब यशाया कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा है, मैंने उन्हें नहीं त्यागा है, वो उनके लिए कार्य करने जा रहा है। ये सब करने में परमेश्वर का उद्देश्य है कि वे देखें, जाने, पहचाने और समझे कि परमेश्वर ने ये किया है। मुझे ये पद अच्छा लगता है। परमेश्वर उन झूठे देवी देवताओं को चुनौती देते हुए कहता है कि जिनकी उपासना उस समय के लोग कर रहे थे। यशाया अध्याय 41 पद 21 से लेकर 24 तक। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताए कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिसे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। वह होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वो बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वो घृणित है। परमेश्वर उन झूठे देवताओं की उपासना के विरुद्ध कह रहा है, जिनकी उपासना इसराइल उस युग में कर रहा था कि आदि में क्या हुआ था। वह उन्हें भविष्यवाणी के क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। यदि हम सच्चे हो तो भविष्य बता दे, जिससे कि उसके पूरे होने पर हम जान ले कि तुम जानते हो कि क्या कह रहे थे। भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र की प्रेरणा का सबसे प्रभावी तर्क है। परमेश्वर द्वारा कही गई भावी घटनाएं मनुष्यों के नाम और स्थानों के नाम तथा घटनाओं के द्वारा और उनका ज्यों का त्यों पूरा हो जाना हमारे धर्म शास्त्र की ईश्वरीय प्रेरणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि जब आप भविष्यवाणियों द्वारा धर्म शास्त्र की ईश्वरीय प्रेरणा को सिद्ध करना चाहते हैं, तब इसकी प्रत्येक भविष्यवाणी को 100% पूरा होना चाहिए। यदि एक भी वचन चूक जाता है तो आप ये मान लीजिए कि वो परमेश्वर का वचन नहीं। परंतु जब हजारों भविष्यवाणियों ज्यों की त्यों पूरी हो जाती है, तब ये एक शक्तिशाली प्रमाण होता है कि ये निश्चय ही परमेश्वर का वचन है। इसराइल के इतिहास में एक बड़ा ही त्रासदीपूर्ण दिन आया था, जब रोमी सरकार ने इसराइल से मृत्यु दंड का अधिकार छीन लिया था। जब रोमी सरकार ने उनसे ये अधिकार छीन लिया था, तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने शासन का अधिकार ही खो दिया है। वे मृत्यु दंड द्वारा ही सरकार की मान्यता को स्वीकार करते थे, क्योंकि जब परमेश्वर ने नूह को मानवीय शासन का अधिकार दिया था, तब उसने उसे मृत्यु दंड का अधिकार भी दिया था। आपको याद होगा कि जब याकूब मरण शैया पर लेटे हुए अपने पुत्रों को भविष्यवाणी दे रहा था, तब उसने यहूदा से कहा था, उत्पत्ति 49:10, जब तक पुत्र न आए तब तक यहूदा से राजदंड ना छूटेगा। राजदंड का अर्थ होता है न्याय करने का अधिकार। जब लगभग सन 12 में रोम ने यहूदियों से मृत्यु दंड का अधिकार छीन लिया था, तब रबियों ने और याजकों ने टाट ओढ़ा और सिरों में राख डाल ली, और लगभग एक सप्ताह तक वे यरूशलेम की सड़कों पर विलाप करते फिरते रहे, क्योंकि वे कहते थे, परमेश्वर का वचन व्यर्थ गया। राजदंड चला गया, मसीह नहीं आया। वे नहीं जानते थे कि नासरेत गांव में वो बड़ा हो रहा था। वे तो यही सोच रहे थे कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ गया, जिसका अर्थ ये हुआ कि ये वचन परमेश्वर की ओर से नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो व्यर्थ नहीं होता। उनके लिए ये राष्ट्रीय विनाश था कि परमेश्वर का वचन टल जाए, परंतु परमेश्वर का एक भी वचन नहीं टला है। और इसी कारण परमेश्वर अन्य देवताओं को चुनौती देता है। यदि तुम वास्तव में परमेश्वर हो तो कहो कि तुम परमेश्वर हो और कुछ करो, अपने आप को सिद्ध करो और हमें आश्चर्यचकित करो। किसी घटना के पूरा होने के पहले वो घटना सुनाओ कि उसका पूरा होने पर हम जाने कि वास्तव में तुम परमेश्वर हो। उनके देवताओं को चुनौती देने का परमेश्वर का ये तरीका मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप परमेश्वर कहता है, यशाया अध्याय 41 पद 25 और 26, मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वो आ भी गया है। वो पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वो हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था जिससे हम ये जानते? किसने पूर्व काल से ये प्रकट किया जिससे हम कहे कि वो सच्चा है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। परमेश्वर खुसरू के बारे में फिर से कह रहा है, मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वो आ भी गया है। वो पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वो हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था जिससे हम ये जानते? यशाया अध्याय 41 पद 27 से लेकर 29 तक, मैं ही ने पहले सियोन से कहा, देख उन्हें देख, और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा, मैंने देखने पर भी किसी को ना पाया। उनमें कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सभों के काम अनर्थ है, उनके काम तुच्छ है, और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या है। ये झूठे देवता जिनकी उपासना में लोग लीन थे, परमेश्वर कहता है कि उनमें समिति देने वाला कोई मंत्री नहीं है, वे सब खाली और मिथ्या है।